इतने सब भक्तों का एक साथ दर्शन करके बहुत आनंद हो रहा है, क्योंकि इट्स रियली वंडरफुल। आशा है आपको आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है, और अगर कुछ दिक्कत हो तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं जान पाऊँ। कैन यू हियर मी क्लियरली?
हरे
हरे कृष्णा, क्या आपको आवाज ठीक से सुनाई दे रही है?
कृष्णा
तो इस्कॉन एनबीसीसी के इस ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम सत्र में वर्चुअली उपस्थित और मंदिर में फिजिकली उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत हो। आज रविवार का दिवस है वैसे, और ये श्रीमद् भागवतम का सत्र जो है ये हिंदी में दिया जाएगा, जिस प्रकार से मुझे आदेश हुआ है। तो हम एक श्लोक का गान करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये सप्तम स्कंद के नवम अध्याय का 19वां श्लोक है। बालस्य नेह शरणम, तो मैं एक साथ गाऊंगा, क्योंकि गाना और फॉलो करना ये शायद बैठ नहीं पाए, तो आप मेरे साथ ही गा सकते हैं। आपको अगर ये स्क्रीन दिखाई दे रही है तो बालस्य नेह शरणम पितरौ नरसिंह नारतस्य चागदमुदन्वती मज्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधीर्य इहाञ्जसेष्टस्तावद् विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानां। ओ, इसका अनुवाद और तात्पर्य हम सुनेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद में श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक के अर्थ को, प्रहलाद महाराज वैसे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान नरसिंहदेव से। आप सब जानते हैं सप्तम स्कंद का नवम अध्याय बहुत प्रसिद्ध अध्याय है, जहां पर प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना करते हैं। जब हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए नरसिंहदेव प्रकट होते हैं और वध करते हैं, उसके बाद बड़े क्रोधित रहते हैं, कोई भी देवी देवता उनके समीप नहीं जा सकता। तो प्रहलाद महाराज को भेजा जाता है ब्रह्मा जी के द्वारा, और वे जाकर प्रार्थना करते हैं। इसी प्रार्थना के अंतर्गत ये श्लोक है। तो इस श्लोक के अंतर्गत अनुवाद है कि हे नरसिंहदेव, हे परम पुरुष, देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं उनसे यद्यपि कदाचित क्षणित लाभ पहुंचता है, किंतु वे स्थायी नहीं रह पाते। उदाहरणार्थ माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते, वैद्य तथा दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते, तथा समुद्र में कोई नाव डूबते हुए मनुष्य को नहीं बचा पाते। तो तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं, माता पिता की देखरेख से, विभिन्न रोगों की दवा से, तथा जल स्थल और वायु में सुरक्षा के साधनों से, भौतिक जगत के विभिन्न कष्टों से छुटकारा पाने का प्रयास किया जाता है, किंतु इनमें से किसी एक के भी द्वारा सुरक्षा निश्चित नहीं है। मनुष्य को भले ही उनसे क्षणिक लाभ मिल जाए, किंतु इनसे स्थायी लाभ नहीं पहुंचता। माता पिता के रहते हुए भी बच्चों को आकस्मिक मृत्यु, रोग तथा अन्य कष्टों से बचाया नहीं जा सकता। कोई भी, यहाँ तक कि माँ बाप भी उसकी सहायता नहीं कर सकते। अंततो गत्वा भगवान ही शरण बनते हैं और जो कोई उनकी शरण ग्रहण करता है उसकी रक्षा हो जाती है। यह ध्रुव है, जैसा कि भगवान ने भगवद गीता 9.31 में कहा है, कौन्तेय प्रति जानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भर होकर यह घोषित कर दो कि भगवान का भक्त कभी मरता नहीं। अतएव जब तक कोई भगवान की अहितु की कृपा द्वारा रक्षित ना हो, तब तक कोई उपचार सफलतापूर्वक काम नहीं करता। फलस्वरूप मनुष्य को भगवान की अहितु की कृपा पर पूरी तरह निर्भर रहना चाहिए। यद्यपि नैतिक कर्म के रूप में अन्य उपचार विधियों को स्वीकार किया जाना चाहिए, किंतु जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपेक्षित है, उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के प्रहारों का सामना करता है, किंतु अंततोगत्वा वो पूरी तरह प्रकृति के अधीन हो जाता है। अतएव यद्यपि तथाकथित दार्शनिक तथा विज्ञानी भी प्रकृति के प्रहार पर विजय पाना चाहते हैं, किंतु वे अभी ऐसा नहीं कर पाए हैं। कृष्ण भगवद्गीता 13.9 में कहते हैं कि संसार के असली दुख चार है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही, अर्थात जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग। विश्व के इतिहास में कभी कोई प्रकृति के द्वारा आरोपित इन दुखों पर विजय नहीं पा सका है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति इतनी प्रबल है कि कोई भी उसके कठोर नियमों पर विजय नहीं पा सकता। अतएव तथाकथित विज्ञानियों, दार्शनिकों, धर्मज्ञों तथा राजनीतिज्ञों को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वे जनता को सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकते। उन्हें जनता को जागृत बनाने के लिए जोरदार प्रचार करना चाहिए और कृष्ण भावनामृत के स्तर तक उठना चाहिए। हमारे द्वारा विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने का जो विनम्र प्रयास किया जा रहा है, वह शांतिमय एवं सुखी जीवन लाने की एकमात्र औषधि है। हम भगवत कृपा के बिना कभी सुखी नहीं बन सकते। त्वदुपेक्षितानां। यदि हम अपने परम पिता को अप्रसन्न करते रहे, तो ना तो हम इस भौतिक जगत में, ना उच्च लोक में, ना ही अधोलोक में कभी भी सुखी बन सकेंगे। मज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। बालस्य नेह शरणं पितरौ नरसिंहा नारदस्य चागद मुदन्वती मज्जतोनौ तप्तस्य तत् प्रतिविधीर्य इहां जसेष्टस् तावद् विभो तनुभृतां त्वदपेक्षिणानाम्। तो भगवान ने तो पहले ही भगवद गीता में इस जगत को दुखालयम कहा है। ये जगत दुखालय है, दुख का आलय है, दुख का स्थान है। तो इसका अर्थ है कि इस जगत में दुख तो आते ही रहेंगे, परंतु मनुष्य को भी एक ऐसी मानसिक शक्ति दी है जिसके आधार पर वो इन दुखों से लड़ता रहता है, इन दुखों को हल करने के लिए रात दिन प्रयास करते रहता है, जो कि एक प्रकार से गलत नहीं है। जो भी हमारे जीवन में संकट आते हैं, जो भी हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आती है, चाहे भौतिक रूप से चाहे आध्यात्मिक रूप से, उसके ऊपर, उससे लड़कर उसके ऊपर मात करके आगे बढ़ना, ये मानवीय एक एक प्रकार से टेंडेंसी है, शक्ति है, एक स्पिरिट है, और ये एक प्रकार से आवश्यक भी है। नहीं तो कोई भी उत्पत्ति का कार्य, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, आध्यात्मिक उद्देश्य से हो, आध्यात्मिक का अर्थ है आध्यात्मिक उद्देश्य से, क्योंकि आध्यात्मिक उत्पत्ति तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उद्देश्य से हो तो वो नहीं हो पाएगा जब तक ये एक फाइटिंग स्पिरिट जिसे कहते हैं वो हमारे पास नहीं है। और भगवान भी इस बात की पुष्टि करते हैं जब वे भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं कि अर्जुन आपको लड़ना चाहिए, है ना। अर्जुन भी भगवद गीता के प्रारंभ में पूरी तरह हतबल होके बैठ गया और कहने लगा कि कृष्ण ये मेरे बस का बात नहीं है कि मैं अपने ही जो सगे संबंधी है, जो रिश्तेदार है, उनको सामने देखकर उनसे युद्ध करूं, और जो कला उसमें थी वो उसे उस उसके आधार पर वो कॉन्फिडेंट था कि अगर उससे कोई भी लड़ता है तो वो परास्त हो जाएगा सामने वाला व्यक्ति, तो इसलिए अर्जुन ज्यादा चिंतित था। लेकिन कृष्ण ने फिर उन्हें ज्ञान दिया और ज्ञान देकर उन्हें समझाया कि कर्म करना कितना आवश्यक है। तो प्रारंभ में अर्जुन जो थे वो वरियर बन गए थे, वॉज कंप्लीटली वरीसम, बहुत चिंता थी उनके मन में, बहुत शोक कर रहे थे। कृष्ण के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने पर वो वॉरियर बन गए, एक वॉरियर स्पिरिट उनमें आया, एक फाइटिंग स्पिरिट उनमें आया, और उस एक असमंजस वाली मानसिक अवस्था को भी वो आसानी से उसकी तरफ, उसके प्रति उपाय करते हुए वो वॉरियर बने, वो योद्धा बने। माम अनुस्मर युद्धे च, ये भगवान का उपदेश है कि मेरा स्मरण करते हुए परिस्थिति से लड़ना चाहिए, ये आवश्यक है। तो ये एक ह्यूमन स्पिरिट है जो कि भगवान की देन है मानव को, और इसके आधार पर कई बड़े बड़े संकटों के ऊपर मात कर सके है ये मानव प्रजाति। परंतु प्रॉब्लम कहाँ आती है, सबसे बड़ा असमंजस कहाँ आता है, जब व्यक्ति सोचने लगता है कि इस प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। वास्तव में प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, परंतु अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो अहंकार से जो विमूढ़ हो जाता है वो जब सोचने लगता है कि जो कुछ कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, मेरे कर्तृत्व की वजह से हो रहा है, मेरे चतुराई की वजह से हो रहा है, मेरे ज्ञान की वजह से हो रहा है, मेरे सामर्थ्य की वजह से हो रहा है, मेरे बल की वजह से हो रहा है, मेरे प्रभाव की वजह से हो रहा है। ये जब वो सोचने लगता है, कोई एक व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह या फिर कोई एक समाज विशेष या फिर एक एक पूरा भौगोलिक प्रदेश, आप चाहे कुछ भी समझ लो, जब मनुष्य किसी भी स्तर पर यह सोचने लगता है कि मेरी वजह से ये हो रहा है, तो मनुष्य को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये प्रकृति जो है ये मनुष्यों ने नहीं बनाई गई बनाई है और ना ही केवल मनुष्यों के लिए बनाई गई है। ये बनाई है भगवान ने, और भगवान ने किस लिए बनाई है, तो केवल और केवल मनुष्यों की सुविधाओं के लिए नहीं बनाई है, अपितु मनुष्यों को योग्य ज्ञान प्राप्त हो इसलिए ये परिस्थिति यहां पर बनाई गई है। और इसलिए जब जैसा प्रभुपाद ने इस परपट में 13.9 का यहां पर रेफरेंस देते हुए कहा है कि वास्तविक दुख जो है वो इस प्रकृति में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ये वास्तविक दुख है। लेकिन फिर लोग सोचने लगते हैं कि भाई मैं कुछ भी उठपटान करूं मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मैं एंटी एजिंग भी कर सकता हूं और मैं एज रिवर्सल भी कर सकता हूं और मैं मृत्यु को भी काबिज कर लूंगा एक ना एक दिन साइंस के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर, और मुझे व्याधि कभी हो नहीं सकती है, मुझे रोग कभी हो नहीं सकता है। तो ये अहंकार जब बढ़ने लगता है ना, तब तो भगवान के पास तो कई ऐसी चाबियां है जिसमें से एक घुमा दे तो पूरी सृष्टि जो है ना, पूरी पूरी जो दुनिया है जो भ्रम के आधार पर चल रही है वो यकायक रुक जाती है, स्तब्ध हो जाती है, स्तंभित हो जाती है। और ये वो समय होता है जब अहंकार से पूरी तरह भरे हुए मनुष्यों को सोचने के लिए ये बाध्य बनाता है कि क्या वास्तव में मैं जो सोच रहा था वैसा ही है। अब शास्त्र तो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ऐसा नहीं है, सब कुछ मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ तो भगवान के कंट्रोल में है। लेकिन शास्त्र पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं था, शास्त्र को समझने के लिए जनसामान्य के पास समय नहीं है ना, वे उसे क्योंकि क्या है, अंग्रेजों ने इन शास्त्रों को एक बहुत ही विचित्र शब्द दे दिया है और उसे कहते हैं माइथोलॉजी। ये शब्द का ही अर्थ होता है मिथ। मिथ का अर्थ है कि जो कुछ भी इसमें लिखा है वो काल्पनिक है, और इससे व्यक्ति के ज्ञान में, ज्ञान को जितनी हानि हुई है उतनी हानि दुनिया में और किसी भी क्रिया से नहीं हुई है, क्योंकि हमारे शास्त्रों को नकारा गया और सिस्टमैटिकली लोगों को ये बताया गया कि ये जो शास्त्र है, वैदिक, सनातनी, हिंदू, आप चाहे कुछ भी कहो, ये शास्त्र एक माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी का अर्थ है कि ये एक काल्पनिक कथा संग्रह है जो लोगों के पास पुराने समय में, समय बहुत हुआ करता था, कोई करने के लिए काम नहीं था तो वो कल्पना कर करके लिखे। ये मूर्खों ने, जो इनोसेंट लोग होते हैं उनके हृदय में इस प्रकार से भावना प्रचारित की, प्रसारित की, और उसकी बहुत बड़ी हानि हुई है। अब ये सब भ्रांत कल्पनाओं को अगर सुधारना होगा, क्योंकि ये इतना डीप रूटेड था, ये इतना गहराई तक भौतिकवाद और भोगवाद का प्रसार और प्रचार हुआ था कि इसको सुधारने के लिए कुछ डीप रूटेड क्लीनिंग एक्शन की आवश्यकता थी। और आज जबकि ये हुआ है, तब ये सबसे अच्छा समय है, और लोग भी, जो जनसामान्य है, मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा, जनसामान्य है, वो भी, उनके हृदय में भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है शास्त्रों को लेकर, भगवद्गीता को लेकर या अन्य शास्त्रीय विधानों को लेकर, क्योंकि वो देख रहे कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। आज उनके पास सब कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं सकते। जिनके घर में आठ आठ दस दस नौकर हुआ करते थे, वो आज खुद खड़े होकर बर्तन मांज रहे हैं, एंड हेल्पलेसली। दे डोंट वॉन्ट टू डू इट बट दे हैव टू डू इट। ऐसा हो रहा है। तो जो अहंकार था ना, जो कुछ कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, और जो मुझे चाहिए वही मैं करूंगा, और जो मुझे चाहिए वही ही होगा, इस अहंकार को पूरी तरह चूर करने के लिए भगवान की एक छोटी सी चाल है। लेकिन जो भक्त है वो समझता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। इसके पूर्व भी जो कुछ भी हो रहा था वो भगवान की इच्छा से हो रहा था, अभी भी जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, और इसके बाद भी जो कुछ भी होगा वो भगवान की इच्छा से ही होगा। तो प्रहलाद महाराज एक ऐसे भक्त है, देखिए, जिनके पिता का वध किया गया है अभी अभी जस्ट, है ना, और भगवान उपस्थित हुए हैं एक विचित्र रूप में, एक विचित्र रूप में उपस्थित हुए। न मृगम न मानुषम, न मृग है न मनुष्य है, न सिंह है न पशु है न मनुष्य है, ऐसे रूप में भगवान उपस्थित हुए। और कहां से उपस्थित हुए? तो स्तंभे सभायाम, उस सभा के स्तंभ से उपस्थित हुए हैं, कहीं से अवतरित नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार विचित्र अवस्था में भगवान अपने आप को प्रकट किए। क्यों प्रकट किए? अपने शुद्ध भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट किए, अपने शुद्ध भक्त प्रह्लाद की रक्षा करने के लिए, अपने शुद्ध भक्त ब्रह्मा जी के वचनों को सार्थ कराने के लिए भगवान उपस्थित हुए। अब भगवान उपस्थित हुए, उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा, और हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, प्रचंड क्रोधित थे। शिवजी जो कि तमोगुण के अधिपति है, और ये संहार के समय ये क्रोध करना उनका कार्य है, वो भी इस क्रोध को देखकर कांपने लगे, वो भी जाकर नरसिंहदेव को समझा नहीं पाए। अब चाहे कोई कितना भी क्रोधी हो, लेकिन अपने पत्नी के सामने तो उसका क्रोध पानी पानी हो जाता है, इसलिए लक्ष्मी जी को भेजा गया, तो लक्ष्मी जी थोड़ा नजदीक जाकर डरकर वापस आ गई। अब ब्रह्मा जी तो परेशान हुए, क्योंकि इस प्रकार से अगर नरसिंहदेव का क्रोध नरसिंहदेव करते रहे तो उन्हें पता था कि ये त्रिभुवन को जला देगा, ये क्रोध का जो प्रभाव है। तो इसलिए वे प्रहलाद से कहते हैं कि हे प्रहलाद, अब ये कार्य आप ही को करना होगा, क्योंकि भगवान ने ये रूप क्यों धारण किया है? आप ही के पिता के ऊपर कुपित होकर ये रूप को धारण किया है, और आपकी रक्षा करने के लिए वे यहां पर आए हैं, इसलिए ये आपका कर्तव्य है कि आप जाकर उन्हें शांत करो। और प्रहलाद के मन में तनिक भी भय नहीं था, 5 वर्ष का अर्भक कहा गया है उन्हें, अर्भक यानी एकदम छोटा बच्चा, 5 वर्ष के अंदर ही, 5 वर्ष का भी नहीं, 5 वर्ष के ऊपर जो है वो कुमार बन जाता है अर्भकम। वो सीधा गए और भगवान को साष्टांग दंडवत किए, और जब नरसिंहदेव देखे पतितम तम अर्भकम विलोक्य देव कृपया, तो वो जैसे ही देखे कि उनके चरणों में एक अर्भक, एक छोटा बच्चा साष्टांग दंडवत कर रहा है, तो उनका हृदय जो है कृपा से भर आया। अब पहले क्रोध से भरा हुआ था, जैसे ही प्रहलाद उनको अप्रोच किए। एक शुद्ध भक्त जब भगवान को अप्रोच करता है तो उनका हृदय कृपा से भर आया और उन्होंने प्रहलाद को उठाया और उनके सर पे अपने हस्तकमल रखे, जो हस्तकमल आज तक लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुए है, बड़े बड़े देवी देवताओं को प्राप्त नहीं हुए है। उन हस्तकमलों का स्पर्श, कर स्पर्श उनके सर पे हुआ, किनके? प्रहलाद महाराज के। ये है शुद्ध भक्त। भगवान का शुद्ध भक्त जो है ये देवी देवताओं से भी उच्च स्तर का होता है। और ये शुद्ध भक्त जब प्रार्थना करता है तो कोई भी प्रार्थना भगवान उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। शुद्ध भक्त की ये शक्ति होती है। एक शुद्ध भक्त का भगवान से नित्य संपर्क रहता है, क्योंकि वो भगवान से कभी भी अलग होते ही नहीं है। और वो भगवान से अलग हो या ना हो, भगवान उनसे कभी अलग नहीं होते हैं, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। आप देखोगे नवम स्कंद के चतुर्थ अध्याय में भगवान खुद इस बात को स्वीकार करते हैं। जब वे दुर्वासा से वार्तालाप करते हैं, वे कहते हैं मैं मेरे भक्तों को कभी त्याग नहीं कर सकता। तो अब प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते करते वे इस श्लोक में श्लोक पर आते हैं जो 19वां श्लोक है। कहते हैं कि बालस्य नेह शरणम पितरौ नरसिंह। हे नरसिंह, माता पिता भी, माता पिता तो स्वाभाविक चाहेंगे ना कि उनके पुत्र या पुत्री की रक्षा हो, उस पर कोई किसी भी प्रकार की आंच ना आए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का संकट ना आए, ये तो माता पिता की इच्छा होगी। बालस्य न इह शरणम, इस भौतिक जगत में देखिए इह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर पदम पदम विपदम ही तेषाम, यहां पर हर पद पर विपदा है। और इसलिए चाहकर भी इस जगत में माता पिता अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पाते हैं। नार्तस्य चागदम उदनवती मज्जतो नौ, जो आरती है, आरती यानी जो रोगी है, न अर्तस्य, वो रोगी अगदम दवा के द्वारा अपने आप का इलाज नहीं कर पाता है, या डॉक्टर भी किसी भी मरीज का दवा देकर इलाज नहीं कर सकता। और उदनवती मज्जतो नौ, और नाव जो है, तो नाव तो कभी बहुत कम ऐसा समय होता है जब नाव डूबती है, लेकिन नाव तो बीच सागर में तैरने के लिए बनाई गई है। लेकिन बीच मझधार में डूबते हुए व्यक्ति को एक नाव भी नहीं बचा सकती है, ना बालक को माता पिता बचा सकते हैं और ना रोगी को औषधि बचा सकती है, अगर वो भगवान के द्वारा उपेक्षित हो। त्वद उपेक्षितानां तावद विभो तनुभृताम त्वद उपेक्षितानां, किसके लिए बात हो रही है? तनुभृतम, तनुभृतम यानी देहधारी जीव। देहधारी जीव अपने आप की रक्षा तब तक नहीं कर सकता है जब तक वो भगवान से उपेक्षित हो। भगवान उपेक्षा करने लगे तो ऐसी जगत में कौन सी सिस्टम है, कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सी दवा है जो उसे बचा सकती है? तप्तस्य तत् प्रतिविधीर्य इहांच श्रेष्ठस्। तो वो प्रतिविधि करते रहता है, लेकिन वो प्रतिविधि, प्रतिविधि का मतलब क्या है कि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को अगर आपको काउंटर करना है तो उसे प्रतिविधि कहते हैं, विधि और प्रतिविधि। तो काउंटर एक्ट हम करते हैं, रोग हुआ तो औषधि लेंगे, कोई भी भौतिक प्रतिकूल अवस्था को अगर हमको ठीक करना है तो हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ काउंटर एक्शन लेंगे, लेकिन उसका असर तब तक नहीं होगा जब तक भगवान इसको नहीं चाहेंगे। और ये बात को मानव भूल गया है। बहुत बार तो जब सब कुछ सरल चलते रहता है तब तो साधक भी इस बात को भूल जाते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया। मैं शुद्ध भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, या मैं उन भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं जो निष्ठा के आगे है, लेकिन जो साधक है वो भी इस बात को भूल जाते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। और अगर किसी प्रतिविधि का असर भी हो रहा है, किसी औषधि का, किसी काउंटर एक्शन का असर भी हो रहा है, तो वो भगवान की कृपा से हो रहा है, ना कि हमारी क्रिया से। भगवान ने तो अर्जुन को कहा कि माम अनुस्मर युद्ध च, कि आपको युद्ध करना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा कि माम अनुस्मर। तो माम अनुस्मर को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो भूल गए तो युद्ध करना बहुत मुश्किल है, और युद्ध किए बिना ये मनुष्य जीवन को कोई अर्थ नहीं है। अर्थात जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहेंगी, और ये तो बहुत छोटी है, बहुत बड़ी बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, बहुत बड़े बड़े संकट आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी ऐसी अवस्था आएंगी जहां पे हमें स्वयं पे विश्वास होना भी बंद हो जाएगा। ऐसा होते रहेगा। उन परिस्थितियों में लड़ते रहना, ये जितना मानवीय स्पिरिट है उतना ही ये एक भक्त का स्वभाव है कि वो भगवान के चरणों में आश्रित रहकर, शरणागत रहकर परिस्थिति से लड़ता रहे। आवश्यक है मां मनुस्मर युद्ध, क्योंकि जो जो भगवान के द्वारा उपेक्षित है उसे कोई नहीं बचा सकता है। नो बड़ी कैन सेव हिम। एक बार प्रभु रामचंद्र जब रावण को मारने गए और बड़ा भीषण युद्ध हुआ, और उसके बाद अब रावण को पता चला कि अब जो प्रहार प्रभु रामचंद्र करेंगे उससे मेरा अंत हो जाएगा, तो प्रार्थना करने लगा। किससे प्रार्थना करने लगा? उसके इष्ट देव थे भगवान शिव, उनसे प्रार्थना करने लगा कि बचाइए बचाइए मुझे बचाइए। तो देवी पार्वती शिव जी से कहती है कि इसने जीवन भर आपकी उपासना की है, इसने जीवन भर आपकी आराधना की है, आज उसे रक्षा की आवश्यकता है, वो आपसे भीख मांग रहा है, प्रार्थना करके उसे बचाइए। तो भगवान शिव देवी पार्वती को उत्तर देते कहते हैं कि आज तक उसने मेरी आराधना उपासना की, ठीक है, आज तक उसकी रक्षा जिनकी कृपा के द्वारा हो रही थी, वे ही आज उसके सामने खड़े होकर अगर उसे मारने की चेष्टा में है, उन्होंने संकल्प कर लिया है कि आज इसका वध किया जाए, तो उसे आज मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। ये भगवान शिव कहते हैं पार्वती से। तो चाहे हमारे पास कितना भी मॉडर्न एडवांस्ड सिस्टम्स हो, गैजेट्स हो, दवाइयां हो, प्रतिकूल परिस्थिति को काउंटर करने के लिए अलग अलग प्रकार से डिवाइसेस हो, लेकिन ये तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि भगवान की इच्छा ना हो, भगवान की इच्छा ना हो। इस प्रकार से रावण को भगवान शिव भी नहीं बचा पाए, क्योंकि प्रभु रामचंद्र उसे मारने के लिए वहां पर खड़े थे। तो ऐसी कोई वस्तु इस जगत में नहीं है जो हमको बचा पाएंगी जब तक कि भगवान की इच्छा ना हो। और इस बात को बहुत अच्छी तरह से कौन जानता है? देखिए, एक बालक जिसकी उम्र 5 वर्ष भी नहीं है वो इस बात को जानता है, और वो बालक किस अवस्था में है, वो उस अवस्था में है जबकि उसके पिता का वध उसके सामने उसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है जिसके द्वारा जिसके प्रति वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये अद्भुत है कि जिसके ऊपर सामान्यतः बालक क्या होते हैं, जो अर्भक होते हैं वो पूरी तरह निर्भर रहते हैं अपने माता पिता के ऊपर, और उनके लिए उनके माता पिता ही सब कुछ है, उनके लिए तो उनके माता पिता सुपर हीरो होते हैं, उनके लिए उनके माता पिता कुछ भी कर सकते हैं। उनकी ये धारणा होती है कि इस जगत में ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जो उनके पिता या माता नहीं कर पाएंगे, तो इस प्रकार से वो निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं अपने माता पिता के ऊपर, और उन्हीं पिता का वध उस बालक के सामने किया गया था। परंतु चूंकि ये भक्त है वो जानता है कि उसके पिता का वध होना ये जस्टिफाइड क्यों है, क्योंकि एक तो वो भगवान से बहुत अधिक द्वेष करते थे और दूसरा वो अपने आप को इस जगत का स्वामी मान बैठे थे। जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को इस जगत का स्वामी मानेगा ना, तो चाहे वो कोई भी हो, हिरण्यकश्यप कोई सामान्य छोटा व्यक्ति नहीं था, वो बहुत बड़ा सामर्थ्यशाली व्यक्ति था। आने लाने के लिए अगर भगवान के पास उपाय है तो हम जैसे के लिए तो कौन सी बड़ी बात है कृष्ण के लिए कि वो हमको ठिकाने लगाने के लिए कोई बहुत बड़ा कष्ट उन्हें करना पड़े, कुछ भी नहीं। उनके पास ऐसे कई विधियां है जिसके द्वारा वो इस अहंकारी मनुष्य को ठिकाने लगा सकते हैं। अब इसमें से भक्त को क्या किस प्रकार से इसको देखना चाहिए और किस प्रकार से इसको लेना चाहिए, ये भक्त के लिए फिर से एक बार एक रिवीजन है इसी सिद्धांत का। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हम शास्त्र को पढ़ते हैं, शास्त्र को सुनते हैं, लेकिन शास्त्र को अप्लाई करने का जो मौका है वो हमें बहुत कम मिलता है, और ऐसे जो समय होते हैं ये वास्तविक शास्त्र को अप्लाई करने का, जो हम सुने हैं जो हम पढ़े हैं उसको वास्तविक एप्लीकेशन में प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए समय भगवान हमको देते हैं। अब इसमें कुछ प्रतिकूल बातें भी हो सकती है, जैसे कि भक्त समाज के लिए एक बहुत बड़ी हानि हुई जब परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज ने अपना देह त्याग किया, लेकिन इसको भी हमको भगवान की इच्छा के द्वारा लेना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि एक शुद्ध भक्त भगवान के अधीन होते हैं और भगवान एक शुद्ध भक्त के अधीन होते हैं। गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव परा, तो कोई भी क्रिया इस जगत में भगवान के इच्छा के विपरीत हो नहीं सकती है। चाहे किसी व्यक्ति से बहुत बड़ा कार्य कराया जाए या किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा फेलियर का सामना करना पड़े, ये सब भगवान की इच्छा से होता है। जितना भी अनुकूल हो रहा है, जितना भी प्रतिकूल हो रहा है, वो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। हमारा कार्य केवल इतना है कि जो भी परिस्थिति हमारे सामने है, माम अनुस्मर युद्ध, भगवान को स्मरण करते हुए हमको उस परिस्थिति को ठीक ठीक काउंटर करना है, उस परिस्थिति से लड़ना है। ये जब तक कि हमारा मानवीय स्वभाव है, ये करते हुए एक भक्त का स्वभाव कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान को स्मरण करते हुए हमारा कार्य हमको करते रहना है। जब भगवान की इच्छा होगी तो परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी, निश्चित रूप से हो जाएगी। और इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि परिस्थिति सदैव अनुकूल नहीं रहती है, उसी प्रकार परिस्थिति सदैव प्रतिकूल भी नहीं रह सकती। तो अनुकूल परिस्थिति बदल के प्रतिकूल हुई तो प्रतिकूल परिस्थिति भी कुछ समय में बदल के अनुकूल अवश्य होगी, लेकिन ये कब होगा, जब भगवान की इच्छा होगी। केवल और केवल भगवान की इच्छा से होता है। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर बातें कहते हैं, मनुष्य को भले ही उनसे क्षणिक लाभ मिल जाए किंतु इनसे स्थायी लाभ नहीं पहुंचता। किनसे? जल स्थल और आता है किंतु इनमें से किसी एक के भी द्वारा सुरक्षा निश्चित नहीं है। इट कैन बी अ प्रोविजन बट इट कैनॉट बी अ गारंटी, इट कैनॉट बी अ गारंटी। मनुष्य को भले ही उनसे क्षणिक लाभ मिल जाए किंतु इनसे स्थायी लाभ नहीं पहुंचता। कितना भी हम काउंट्रैक्शन को तैयार करके रखे लेकिन उनसे हमको स्थायी लाभ नहीं पहुंच सकता। माता पिता के रहते हुए भी बच्चों को आकस्मिक मृत्यु, रोग तथा अन्य कष्टों से बचाया नहीं जा सकता। आप जरा बताइए कि कौन से माता पिता चाहेंगे कि उनके बच्चों को परेशानी हो या उनकी उनके अस्तित्व को धोखा पहुंचे, उनकी जीवित हानि हो? कोई माता पिता नहीं चाहेंगे। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो जो बच्चों का मृत्यु दर है अलग अलग प्रकार के रोगों के द्वारा वो काफी कंसिडरेबल है, और चाहकर भी साइंस उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं खोज पा रहा है। अभी आज की ही परिस्थिति देखिए, जिस वायरस के विषय में इतनी चर्चा हो रही है, ये वायरस इतना खतरनाक है और वास्तव में है भी नहीं, ऐसा नहीं है, परंतु अगर आप देखोगे तो भारत में इसका मृत्यु दर केवल 2.5% है, जबकि आप यूरोपियन कंट्रीज में देखोगे तो वो 10 के आगे चला जा चुका है। अमेरिकन कंट्रीज में भी ये बहुत आगे बढ़ चुका है। अब लोग तो कहते हैं कि इसकी कोई दवाई नहीं है, तो अस्पताल में आप एडमिट करवा के क्या कर रहे हो पता नहीं है, दवाई है नहीं तो क्या कर रहे हो? तो डॉक्टर को भी कोई आइडिया नहीं है, डॉक्टर तो भगवान के भरोसे छोड़ रहे हैं लेकिन मानते नहीं है, बस वो तो वैसे भी भगवान के भरोसे छोड़ रहे, जो ट्राई कर रहे ट्रायल एंड एरर, कुछ ये दो कुछ वो दो, वो एंटीबायोटिक दो ये एंटीवायरल दो, और व्यक्ति अपने आप ही रिकवर हो रहे। 2.5% मृत्यु दर का अर्थ क्या है? और रिकवरी रेट इज मोर देन 65% इन इंडिया, तो इसका अर्थ क्या है कि कहीं ना कहीं लोग अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैं ठीक हो गया, ये मेरा कर्तृत्व है, ये मेरा सामर्थ्य है, तो ठीक होने के बाद ये कहना अलग बात है भाई। जब वहां बेड पर पड़ा था तब क्या सोच रहा था, इसको पहले रिकलेक्ट करना चाहिए। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मैं मृत्यु के रूप में आता हूं और सब कुछ हर लेता हूं। तो अंत तो गत्वा तो हरेक को भगवान के चरणों में ही समर्पित होना है, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, कोई बचा ही नहीं सकता है। लेकिन लोगों को ये भूल गए थे, ये भूल गए थे और याद दिलाना जरूरी था। अब क्या है, हरे कृष्णा वाले कितना चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, कुछ ना कुछ तो उनको प्रैक्टिकली भी समझाना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकली समझाने का काम भगवान ने किया है और उसके लिए जो कुछ भी बन पड़े वो कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। भक्तों को भी इसे भगवान की इच्छा के रूप में देखकर और भगवान की इच्छा के रूप में इसको स्वीकार करके कार्य करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। सर्व विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि।
हरे कृष्ण। किसी का कोई सवाल है, प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस ग्रेस कदम कृष्ण प्रभु, मैंने बहुत कम समय में उनको बताया कि श्रीमद् भागवतम क्लास लेने के लिए, तो उनका जीवन ही भागवतम है। तो इस्कॉन में दीक्षा होने से पहले उनका नाम कौस्तुभ भागवती था अभी भी वो भागवत उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है, बाद बाकी जो बिजनेस जो है वो बाद में उनका ये रहता है। सारे आचार्यों का कमेंट्री वगैरह पढ़ते रहते हैं और बहुत सुंदर तरीके से भागवतम क्लास देते हैं। और खास करके जब उनको मैंने क्लास दिया, मैं उनको बताया कि आप जो भी श्लोक है, आप संडे को श्लोक नहीं होता है, श्लोक आप चूज कर सकते हैं। तो उनके कुल देवता है नरसिंह भगवान है, तो नरसिंह भगवान का याद किया तो उनके नेचुरली उन्होंने ग्लोरिफिकेशन किया है। तो आइए उनको हम धन्यवाद देंगे एक तीन बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ग्रेस कदम कृष्ण प्रभु की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान का दर्शन हो रहा है।
प्रभुपाद की।